वो चल पड़े जी रास्ते में। नीमा कह रही है कि देख भगवान ने केकरी मारी हमारे साथ। फिर आप ही कहती है कि हमारे संस्कार है, हमारे बाग में है कोना। ए परमात्मा, एक बच्चा हमें भी दे देते तो दुनिया के ताने ना सुनने पड़ते। आपने के भारा हो ची मालिक, आपके दरबार में कोई कमी नहीं है। ऐसे करती करती वो जा रही है, रो रही है। वो कहता है तू बावड़ी हो जाएगी, बड़ी नादान है, जब अपने भाग में है ही नहीं तो भगवान देगा कहां से। हरदम ऐसे विचार मत रखा कर, अपना भगवान बजा कर। इतना करते हुए जा रहे हैं, उधर से क्या होता है कि वो कबीर भगवान अपने सतलोक से आकर ऊपर से एक आकाश से प्रकाश का गोला सा आया और उस तालाब के अंदर आकर वो एकदम सारे जो तालाब के कमल ऐसे नजर आने लगे जैसे दिन में दिखा करें, और फिर वो सारा प्रकाश में हो गया। फिर वो प्रकाश सिमट कर एक फूल, कमल के फूल पर बालक के, नवजात शिशु के रूप में परिवर्तित हो गया। इस दृश्य को स्वामी रामानंद जी के एक शिष्य अष्टानंद नाम के, वो अपनी आंखों देख रहे थे। उसने देखा कि ऐसी रोशनी मैंने तो जिंदगी भर कभी देखी को नहीं। उसके मन में क्या शंका आती है कि ये नहा धोकर अष्टानंद भी उसी तालाब में, क्योंकि स्वच्छ पानी था, अपने ध्यान मगन होने की कोशिश कर रहा था, मेडिटेशन करने की चेष्टा कर रहा था। इतने में इसने रोशनी देखी, इतनी गजब की रोशनी की इस लोक की तो सीनी। इसके मन में क्या आई कि हो सकता है मेरी भक्ति की कोई उपलब्धि होगी, मैं जो भजन सेवन कर रहा हूं हो सकता है कोई मालिक में रजा बख्शी हो। कहते प्रकाश, परमात्मा प्रकाश में है, वो ज्योत स्वरूपी है, ज्योति माने प्रकाश। वहां से उठकर चल पड़ा, अपने गुरुदेव के पास आया रामानंद से पूछने के लिए कि या मेरी भक्ति की उपलब्धि थी या कोई मेरा भ्रम था। ऐसा तो रामानंद जी कहने लगे, अष्टानंद जो ऐसे लक्षण होते हैं ना, आकाश से कोई प्रकाश आता है उसमें कोई अवतार गण ऊपर के लोकों से आकर आते हैं, कोई परमात्मा कोई ईश्वरीय शक्ति आई है भाई। ऐसे लक्षण जब होते हैं तो कोई अवतार ऊपर से आते हैं, तो यहाँ किसी माता के गर्भ में जन्म प्रवेश करेंगे और अपने लीला किया करेंगे, कोई कृपा हुई है कलयुग में अवतार आने की। उसको इतना ही मालूम था कि माँ के गर्भ से ही आते हैं, वैसे नहीं आते, लेकिन भगवान के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। परमात्मा है तो उसको कोई पाबंदी नहीं है कि माँ के गर्भ में आए ना आवे और नारा भी आ जाए। तो जी वो बात समाप्त हुई। वो स्नान करने के लिए नीमा नहा रही है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह जो सूर्य उदय होता है तो अंधेरा जल्दी छट जाता है। नीमा नहा के बाहर आई, अपने जो वस्त्र बांध के नहाई थी उनको धोने के लिए पुनः तालाब पर गई, तो क्या देखती है कि सामने एक कमल के फूल के ऊपर एक पैर मुख में है, जैसे गुठे चूसा करे बच्चे अंगूठे को मुंह में ले लेता है नवजात शिशु, और एक पैर को ऐसे मार रहे हैं। उसने सोचा कि जल में हो तो कोई शंका होती नहीं, उसने सोचा नीमा ने कि कोई शरत है और क्यों तेरा पति मार रहा है इसको न दस ले। एकदम फिर ध्यान से देखती है तो उसने देखा कि हो ये तो कोई बालक है, और इतने गहरे पानी में कम से कम किनारे से भी 50-100 फुट की दूरी पर, वहां पर नवजात जच्चा कोई जच्चा भी नहीं जा सकती, वहां पर कोई औरत वैसे भी नहीं जा सकती जहां बालक में दरिया हुआ है, गहरा पानी बहुत था। तो उसने अपने पति से कहा कि देखियो जी सामने एक बालक है, एक बच्चा है, वो नारा है अपनी मस्ती में, और क्योंकि रास्ते में भी चर्चा बालक की हो रही थी, वो कहने लगा तुम पागल होगी इन बच्चों के चक्कर में, नादान भगवान ने हमारे को नहीं दिया भाग में, तो क्यों तो हर समय तो उसकी चर्चा करती है। या बालक कहां से आया था पानी में, तू कति नादान होगी है, तू पागल होली है, अपने जल में डाट ले भगवान, विश्वास कर ले जैसा उसने हमारे भाग में था दे दिया। तू हर समय मेरा जीना दुख के दुखी करा कर हर समय रोती रहती है। वो कहती है नहीं जी, सचमुच बच्चा है, सचमुच बच्चा है। देखिए देखिए, जो उसने ऐसे कसक के साथ और जिधर वो इशारा कर रही थी, अब नीव की नजर पड़ी तो सचमुच कमल के फूल पे एक नवजात शिशु, इतना सुंदर शरीर के सारा शरीर वो तेज से जगमग जगमग कर रहा है। उसने तो आओ देखा ना ताओ देखा, कमल के फूल समेत तोड़ लिया, कमल के फूल समेत उसको उठा के और बाहर ले आए। बाहर लाकर अपनी पत्नी को दे देते हैं, कहते हैं स्नान में स्नान कर लेता हूं। जब उसने स्नान कर लिया, ये सामने चित्र है, ये नीमा है, ये नीरू खड़ा है, और कमल के फूल समेत तोड़ के इस बच्चे को उठा के बच्चे को और नीमा को थमा देते हैं और स्वयं स्नान करके फिर बाहर आते हैं। चलने की तैयारी होती है, चलने की तैयारी होती है फिर, क्योंकि मनुष्य जो है आदमी बहुत लोक लाज से बहुत डरता है, औरतें तो फिर भी इतना नहीं, क्योंकि उन्हें तो घर में ही रहना होता है। आदमी ने जगह जगह जाना होता है तो वो सोचता है कि फलाना क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा, ऐसे कहेंगे वैसे कहेंगे, कोई कहेगा किसी का लड़का उठा लाए इनका बालक नहीं था, कोई कुछ कहेगा, कोई चोरी कर लाए, कोई कहेगा कहां से ले आए। फिर उसने कहा अपनी पत्नी से कि इस बच्चे को यहीं छोड़ दो, हम इसको साथ में ले जाएंगे। लेकिन नीमा ने जब उस बच्चे कबीर भगवान को उस बालक रूप में परमात्मा ने बोली ना जाने इस बच्चे ने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, इसके बिना मैं रह नहीं सकती, मर सकती हूं, क्योंकि देखो उस भगवान का नाम लेता हूं मेरे रोम रोम खड़े हो रहे हैं। और जिस माई में उस परमात्मा को छाती से लगा होगा धन्य उसके भाग, उसको जो आनंद आया होगा उस परमात्मा के संपर्क में, उसका वर्णन वही कर सकती है। कहने वाली जी मैं नहीं छोड़ सकती, मैं मर सकती हूं। वो कहने लगा नादान तू ना समझी करती है, हमेशा जिद करती है, तू सोचती नहीं, अब जी सोच लिया मनत है, इस बच्चे को भगवान ने मुझे दिया है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। वो बताता है देख बात सुन, पीछे हमारे को मुसलमान बना दिया ना, अब जाति के रहे ना घर के रहे ना घाट के रहे, और अब पता है क्या होगा, जब उनको पता चलेगा किसी का बच्चा उठा ले, हमारे को नगरी से निकाल देंगे और अपनी पिटाई होगी, अब ना जाने कहां डेरा होगा, बावड़ी कितके लाल खिलाओगी तू रहने दे। और बोली जी कुछ भी हो मैं तो घर भी छोड़ दूंगी और बार भी छोड़ सकती हूँ, पर इस बच्चे ने ना छोड़ू। वो कहने लगा मैं तेरे दो करूंगा, एक तो हमेशा जद पकड़ती है तुझे, ऐसे पिटाई करूंगा तेरी, जब मैं थप्पड़ उठाया ना हाथ, उसमें ये भगवान बोले कबीर साहब के नीरू घबरा मत ना, तो मुझे घर ले चलो, कोई आपत्ति नहीं आओगी, मैं तुम्हारे साथ हूं। इससे वो नीरू घबरा गया, ये कोई फरिश्ता है, ये कोई अवतार गण है, नहीं एक दिन का बालक उक्कर बोले, वो तो चुप करके हो गया कि ना मेरा भगवान की क्यों रजा से इसमें आगे आगे चल पड़ा। अब गांव में नगरी में पहुंचे, सारे नगर में शोर मच गया कि इतना सुंदर बालक है आज तक हमने नहीं देखा, उसके चेहरे में तो ऐसी चमक आई जैसे कोई भगवान हो, कोई कहता है ये तो इंद्र दिख है, कोई कहता है ये वरुण का अवतार से, कोई कहे ये विष्णु अवतार है, और विष्णु वर्ण का वही तक तो ऊपर शक्ति आ रही है हमारे मत तक कोई ना। इतने में लड़के का नाम रखने के लिए हिंदू लोग पहले मुसलमान आते हैं, मुसलमान अपनी किताब लेकर आते हैं कुरान को, और कुरान को ऐसे खोल के कुरान शरीफ को, तो उस सारी की सारी कुरान में कबीर 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 ये सभी ये लेख पाया, उनका लेख नहीं पाया जो उसमें अक्षर थे, जो ज्ञान था वो खत्म हो गया। सारे कुरान में केवल कबीर 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 मिला। उन्हें सब उलट उलट कर देखा, जहां देखे वहीं पर कबीर कबीर लिख रखा। क्योंकि वो क्या करते हैं कि जब राइट मतलब दाएं हाथ को, क्योंकि उल्टी चलती है सर वह उर्दू, दाएं हाथ को जो पहला अक्षर पहली लाइन फर्स्ट जो पेज निकलेगा उस पर होगी, उस पे जो पहला अक्षर होगा उसके ऊपर वो नामांकन किया करते हैं। र हो तो रफीक अहमद, स हो तो शफीक अहमद, ऐसे ऐसे वो नामांकन किया करते थे। तो उसने कबीर 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 पाया, और कबीर नाम पूर्ण परमात्मा का है, कबीर पूर्ण परमात्मा का नाम है। तो उसको कहते हैं कि भाई ये नाम तो उच्च घरानों में रखने योग्य है, क्योंकि वो लालची लोग कहेंगे अच्छा सा नाम का डी का जी, अच्छा नाम के लिए मैं 500 रुपये मिल गया, और वो पहला अंगली लाल बढ़िया नाम हो उन अच्छे घराने गए पर वहां पर वो फेल हो गए, और गरीबां ने दूसरी जगह अंगली ला ले जाए घटिया सा नाम हो, क्योंकि ये सारा शब्द चल रहे हैं भगवान के का मजाक बना रखा है नीच आत्मा हमारे जैसा ना जो मार्गदर्शक बन गए। भगवान ने टन टाइम वेट दिया लकी तंगली लाओगे, सारे ही कुरान में कबीर कबीर पाया, कुरान में पिटक दी तुम्हारे का धर्म भी बिगाड़ दिया इसने। और ये तो भाई उच्च घराना में धर्म देगा नाम से इस गरीब दुलाए का हम नहीं रख सकते इस नाम को। कबीर साहब ने बोले मेरा नाम कबीर ही रहेगा काजी जी। फिर वह डर गए कि यूं तो वह क्यों और सोता है उनकी घी जीवन की गेर के कुरान में तो वह जान बोर्ड कभी बन देखा भी आके। उधर से उधर पंडित जी आए नाम धरने के लिए, पंडित जी को पहले कह दिया कि क्यों पोते ठाए आओ हो, मेरा नाम कबीर रहेगा। वह विधि जीवन जी तो वह एक दिन का बालक बोल जा देखना सबके पसीने आ जाए या भाई के मैं परम शक्ति और किससे के टकन की हिम्मत को ना। तो ऐसे कबीर साहब का नामांकन हुआ। लहर तारा में कमल पे फूल पे जो कबीर साहब आए, ये आपने सुना था, लहर तारा में कमल के फूल पे बालक बल दिखलाया कि ना काजी आगे नाम धरण में नाम कबीर दरवाया कि ना, नीरो नीमा गए नानको वहां जिलाए को पाया कि ना काजी आगे नाम धरण में नाम कबीर दरवाया कि ना, तुम पूर्ण ब्रह्म करतार बन गए कबीर हरी, पूर्ण ब्रह्म करतार बन गए कबीर हरी। क्योंकि यहां पर हरि नाम ने भगवान कहते हैं, हरी नाम आया ना विष्णु पर सुई जाती है हमारी, हरी नाम हरी कहो भगवान कहो अल्लाह कहो राम कहो गॉड कहो खुदा कहो उसे साहेब कहो, ये एक ही बात है। हमने हरी क्योंकि हम ब्रह्मा विष्णु महेश के अंतर्गत हैं, तो हमारा हरी वही है। जैसे कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मान लीजिए कोई डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं डीएम के ऑफिस में, तो वो बार बार क्या नहीं कहते कि डीसी साहब ने ये काम कहा है या डीएम साहब ने ये काम कहा, वो कहते हैं साहब ने ये बोला है, ये साहब ने ऐसे कहा है ये काम कर दो, तो उनका अंडरस्टूड साहब है जो उनका प्रधान है किसी भी क्षेत्र में। ऐसे ही यहां का हरि विष्णु है, जब यहां हरि नाम आता है तो हमारी सुई विष्णु पर पहुंच जाती, आगे नहीं सरकती। लेकिन हरि विष्णु भी है, हरि निरंजन भी है ब्रह्म, और हरि कबीर भगवान है, वो पूर्ण परमात्मा हरि है, बन गए कबीर हरि। तो यहां थोड़ी सी गरीब दास्तियां की वाणी आपको सुनाता हूं। अनंत कोट ब्रह्मांड में अंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी तने नमाए। ये गरीब दासी महाराज स्वयं कबीर अवतार हरियाणा के अंदर रोहतक पुराना रोहतक और नया झज्जर जिले में एक छोटे से छुदानी गांव में आके एक बलराम के घर पर जन्म लिया। रानी इनकी माता जी का नाम था। पर वहां इन्होंने 10 वर्ष की आयु में वो स्वयं कवि भगवान आकर के दीक्षा देकर गए थे और सतलोक दिखाया था। उसके बाद गरीब दासियों ने ये गरीब कबीर साहब की महिमा गाई और एक ग्रंथ साहब की वहां प्रार्थना की, उसमें से ये वाणी सुना रहा हूं जो आंखें देखी। कबीर साहब गरीबदास जी कहते हैं, हम देखा सो साच है और सकल प्रपंच। हमने जो आंखों देखे, जो ऊपर के सारे लोग और सभी भगवानों की उनकी क्रियाएं, वो हम इसमें वर्णन कर रहे हैं। अंत कोट ब्रह्मांड में मंदी छोड़ कहा है, सो तो एक कबीरे हैं जननी जने नमाए। गिर सरद स्वरूपी साहेब धनी, सरद स्वरूपी साहेब धनी, सरद सिंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाई। गिर जल तल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर है वो अवगत पुरुष अलेख। यहां पर पुरुष नाम आएगा ना, पुरुष नाम ये परमात्मा का बोधक है। पुरुष नाम भगवान है, सतपुरुष, सतपुरुष सच्चा भगवान, सत साहेब सच्चा ईश्वर। एक बार मीराबाई जब घर त्याग कर जा चुकी थी, उसने पता चला कि गुफा के अंदर एक महात्मा रहता है, चलो महापुरुष के दर्शन करने जाती हूं। वहां खड़े सेवकों ने कहा कि आप माई यहां से जाइए। अब क्यों भाई, कि ये महात्मा औरतों को दर्शन नहीं देते। वह बोली, भाई देख बात सुन, ये पुरुष है। अखा ये पुरुष है भाई, बट यह फिर मन्नत तो पुरुष कितौरा सुना था, भगवान वहां रहता है और पुरुष यहीं पर है, तो इसके दर्शन करके जाऊंगी मैं यहां से जाती को ना। तो उन्होंने बताया कि जैसे एक माई है और मीरा नाम है उसका, तो कहती है मैं दर्शन कर लेना जाऊंगा को ना, जब भगवान यहाँ बैठा है तो मैं क्यों डड़े डूं। पुरुष नाम परमात्मा का, ये बाकी नकली पुरुष है जो हम बने बैठे। तो जी उसने सोची, भाई बात तो कुछ समय लगती सी कैसे, तुम दर्शन करते हैं। हाँ क्या बात है माई, मैं भगवान मैं देखूं थी कि पुरुष बताया एक, दूसरा पुरुष आप कहां से आ गए। उस माई ने, मीरा ने उसको डिटेल बताई, पैर पकड़ दिए उस माई की। मैं बोले इस चलने वही मिट्टी तेरी है वही मेरी है नादान, अभी तक तो औरत को दूसरा मानता तेरे अगर भक्ति को ना, अब तो इस ऊपर के खोल को देख रहा है, अंदर वस्तु दिखाई नहीं दे रही तुझे, इसमें है क्या। जैसे पहले स्वांगी स्वांग किया करते थे, उसमें लड़के जो है लड़कियों का रोल करते थे, और ऐसा खो ओम सूरत जो कहते तो लड़की जैसा रूप, छोटे छोटे लड़के 12-13 वर्ष की बिना दाढ़ी मूंछ के रोल किया करते थे। तो स्वांग देखने वाले जो गए हुए थे बच्चे, उनमें से जिसने उसको देखा था कि वो लड़का है लड़की नहीं है, तो जब वो डांस कर रहा है तो वो तो कहता है देख बड़ा अच्छा नाच रहा है, वो कहता नहीं नाच रही है बोल, नहीं नहीं ये लड़का है, वो कहता नहीं लड़की है। चलो वो नहीं बोला कि उसने देरा नहीं इस बात का, इन्हें मैस करता रहेगा। तो शाम के समय जब सबसे समापन हुआ उनका, वो दोनों के दोनों के साथ चले गए। लड़के ने जाके अपने वस्त्र उतार कर अपने कपड़े बच्चों वाले लड़के वाले पहन लिए, जो आर्टिफिशियल अंग थे उतार कर खुटी के टांग दिए। जब उसकी माँ माथे का हमारा साक्षी तो लड़का ही था। अगले दिन जब वो स्वांग देखने गया, उसको लड़की नहीं मान रहा था, उसने वो अंदर जो आर्टिफिशियल अंग थे वो दिखाई दे रहे थे। ऐसे ही संत जो है इन खोल में नहीं देखते, अंदर आत्मा एक है, उनकी दृष्टि वहां पहुंच जाती है, फिर इनमें दूसरा भाव नहीं बनता। तो इस प्रकार बंदी छोड़ कह रहे हैं, यह पुरुष जहां नाम आता है अवगत पुरुष अलेख, अलेख माने अवर्णनीय, अविगत जिसकी गति को कोई जान नहीं सके, जिसकी महिमा आज तक कोई पा नहीं पाया, और पुरुष पूर्ण ब्रह्म कबीर है। अविगत पुरुष अलेख, अलेख जिसका कोई लिख लिख लिखने में भी कोई ना उसकी महिमा। जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर है अविगत पुरुष अलेख। गरीब सेवक होकर उतरे, इस पृथ्वी के माही जीव उदाहरण जगत गुरु हो बार बार बल जाही। जीव काशी पूरी कष्ट किया उतरे अगर आधार मोमन को मुजरा हुआ वहां जंगल में दीदार। मोमन कहते हैं वो मुसलमान जो आर्टिफिशियल बनाए जाते हैं। इसमें सन्नित और मोमन दो प्रकार के मुसलमान होते हैं। गिर कोट कर्ण शशिभाने सुद आसन अदर विमान तरसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल कंड अरु प्राण। कोट कर्ण शशिभान सुद करोड़ों चंद्रमा और सूर्य की किरणों की रोशनी को मिक्स कर दे उसमें गर्मी ना हो उस बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब की इतना तेजो में शरीर था। और परसत परसत माने सप्रस करते ही उस लड़के को पूर्ण ब्रह्म भगवान को शीतल कंड और प्राण उस माई के निमा के यानी इतना आनंद आएगा इतनी शांति होगी उसको। कोट कर्ण शशिभान से दे आसन अगर विमान परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल कंड और प्राण। गोद लिया मुंह चोम के हेम रूप झलकंते वो जगर मगर काया कर है दम कर पदम अनंत। उस माई ने भगवान को गोद लिया उसके मोचे में लाद कर अपने बच्चे के रूप में। देखियो भगवान धन्य है वह नीमा जिसका संतान ना हुई और जिसके कारण भगवान ने स्वयं संतान पूर्ति और उसकी मुक्ति करने के लिए स्वयं आना पड़ा। इसकी करनी उसके पिछले संस्कार धन्य है। गोद लिया मुख चूम के हे करु हेम रूप झलकंत। हेम माने बर्फ हिम हिम का अपभ्रंश है हेम। अब कहते ना ये बताइए अच्छा बढ़िया कपड़ा देना सफेद तो कहा करते हम भाई स्नो व्हाइट देना स्नो व्हाइट यानी बर्फ जैसा सफेद। बर्फ की सफेदी सबसे ज्यादा सफेद इसके बराबर कोई सफेदी नहीं है जो बर्फ में व्हाइटनेस होती है। तो यहाँ कहते हैं हेम रूप झलकंत उस बर्फ की तरह उनकी सुंदरता इतना सफेद रंग था मालिक कबीर भगवान का उस नवजात शिशु का। ग्रीब गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंत वो जगमग काया करे दमक पद्म अनंत। काशी उमटी गुल भया गुल मन सौर होगा सारी और उमड़ उमड़ को आई जब लड़के का बेरा पिटा सारी काशी उमड़ का आगी। काशी उमटी गुल भया मोमन का घर घेर कोई कह ब्रह्मा विष्णु है कोई कह इंद्र कुबेर। अब बच्चा रख रहे ना बुआ आवेगी काकी ताई आऊंगी कट्ठी होंगी कोई तेन कहगा इसके दादा का दिखे से कोई कह इसके काका का ना शकल जारी से अपने अपने अटकल लाग रहे ये ले चल है इनकी कोई लोग ना इसके पापा का है नो का नहीं ये अपनी अटकले अपने हिसाब से लगाती है। ऐसे ही वो आकर के सभी कहते हैं कोई तो कहते हैं ब्रह्मा जैसा दिखे कोई कहने में विष्णु के समान जिसकी सुंदरता है। कोई कांग्रण धमराए है कोई कहते है ईश सोलह कला सुधान गति कोई कहे जगदीश। दुनी कहे ये देव है देव कहते हैं ईश ईश कहे ये पूर्ण ब्रह्म है पूर्ण विश्व बीस। देव दुनिया के लोग कहे देवता से देवता नो कहे तो विष्णु हो सका है और विष्णु नो कहे तो भाई पूर्ण परमात्मा पाएगा हमारे मत से कोई। अब क्या करते हैं वो मालिक ना दूध पीते हैं ना रोटी खाओ रोटी तो खाओ ठीकड़े ना दूध पीवे ना कुछ दलिया वलिया घोल गाल कर ना कहना चाहे हुआ भी ना पीवे तो दूध तो उनके स्तर में था नहीं तो क्यों समस्या आएगी। वह माई रोए रोए इतनी रोए कि भगवान आज सातवां जन हो गया और इस बच्चे ने दूध नहीं पी दिया है मालिक अब मेरी इसमें ममता बनेगी अब ये मरेगा देख मेरे खोटे बाग। प्रथम तो संतान नहीं थी अरे परमात्मा संतान दी अब यह मरेगी हे मालिक इससे अच्छा ना देते सबर तो हो रहा था या डबल पीड़ा और कर दी मेरे तो यो कहकर फूट फूट करो फूट फूट करो रुदन मचा दिया। इतने में शंकर भगवान क्योंकि उपासक शंकर भगवान की थी। शंकर भगवान एक साधु का रूप बना कर आकर कह माई क्यों रो रही हो, क्या तकलीफ है बेटी तुझे। महात्मा की तरफ देख कर माई कहती है भगवान मेरे दुख न मत न सुने, तुम भी रो पड़ोगे। महाराज जी मेरे दुख को मत सुनो, आप भी रो, आप प्रसन्न नहीं होगा। कहने लगा बेटी फिर भी बताओ, सुनाने से मन हल्का होता है, ऐसी क्या आपत्ति है आप पर। रोती रोती सबक सबक कर कह रही है कि महाराज जी हम पहले तो हिंदू थे मुसलमान बना दिए, जब वाई फोर्स जबरदस्ती वो भी चलो कोई बात ना, हमने सबर किया। हमारे संतान नहीं थी, उस संतान के ना होने से कष्ट बहुत था आत्मा को, और फिर भगवान ने कृपा की ये लड़का दिया, एक कमल के फूल पर हमें लहर तारा तालाब में पाया, और अब ये मालिक हे भगवान हे राजन हे महाराज जी ये ना कुछ खाता ना पीता ये मरेगा। नौका कहा फिर उन्दितरिया इचकी बंदगी रो रो कर, कभी लड़के का ना देखे और कभी अपनी किस्मत में कोसे। शंकर भगवान ने उस कबीर भगवान को उठा लिया और आंखें में आंख मिलाई। कबीर साहब ने सात बार चर्चा करी शंकर भगवान से, अरने वाला शंकर जी ने कह दो मैं मरण का कोना, अरिया बुढ़िया मरेगी, इसने यूं कह दे कि एक बिना बाई ब्याई कुंवारी बच्ची ले आऊंगे गऊ की बच्चिया, और कुंवारी बच्चिया के ऊपर हाथ धर दिए तो, और उसमें तो दूध निकलेगा, इस दूध में पी लूंगा या माई जी जाएगी, और फिर ये बच्चिया सदा दूध देगी, इतना मैं रहूंगा तो बालक रहूंगा। अब उसने शंकर अरवा समय माई देखी देखी ये बालक है कमा लियो रिश्ता है की बीमारी है, बोलने भी है बता, जब मैं बोलने लग जाएगी इस महात्मा के ना भी बतला उसे, पर फिर भी अपना बेटा समझ गए और फिर भूल जाती थी उसकी समर्थता से परिचित नहीं, क्योंकि बालक बालक भी ख्याल रहे माँ बाप ने। तो इतने में नीरू आ जाता है, नीरू से कहा शंकर जी ने कि भाई नीरू लेकर एक तो कोरा बर्तन जा को मार के थे, कोरा बर्तन यानी मटका वटका छोटा था, और भाई एक कुंवारी बच्ची लिया और फिर ये दूध देगी है दूध पिएगा, ले आया शंकर भगवान ने कहा जर दिया दूध अपने आप निकल ला गया, नीचे बर्तन रख दिया तो बर्तन गिर गया, अगले माई ये दूध पिएगा तेरा बेटा, अन्य वाला माई ये मरण का बालक है ना, ये तो दुनिया का रचयिता है, ये सृष्टि का रचने वाला है, नक्षत्र बताते हैं ना, इसके हाथ की रेखा जैसी बताती है ये फटे गया सही कह रहा है हमारा जी, तुमने बोला इसके हाथ के नक्षत्र बताते हैं ये अनंत के, ये ना जाने के परम शक्ति है और इसकी आयु बहुत लंबी है, माई तू घबराओ मत नहीं। और नवली दूध का ये बच्चा रोज दूध दिया जाए जिसके दूध पिलाते रहना, मंदी छोड़ने दूध पिया। उनकी वित्तीय हालत बहुत खराब थी और जो मैं चिंतित रहते थे छोटे से बालक में छोड़ कर अब काम क्यों कर करो, माई रोज बैठी रहती उसके दौरे काम भी छोड़ दिया था। एक दिन कबीर साहब कहते हैं नीरू जी क्यों अकेले का काम बने नहीं, नीरू मायूस हो गया तो नीरू को कहता है कि पिताजी मेरे जो वस्त्र है ना जिसके ऊपर मैं लेता हूँ पालने, इस बिस्तर के नीचे एक असरती रोज मिलेगी आपको पढ़ने की, उसने ऐसे करना जितना तुम्हें चाहिए वो अन्न रख लेना, उसमें से अपना आटा नमक मिर्च ले आना, बाकी का भंडारा करते रहना। इसने सोची ये बालक कौन है जो तुम्हें और शक्ति आ रहा है, हर है बोल रहा भाई रोज कहाँ से आएगा ये असरती, सुबह जब उसकी माँ ने वो कपड़े बदलने लगी ना असरती पाई मेरे के पास की, कहने लगी देखियो या सरती चिपका गया, मेरे बोला ये बच्चा काल कह रहा था मेरे से कि एक सरती रोज मिला रहेगी, एक सरती उनको रोज मिलने लगी, उनको बता दिया था इसको सारी को स्वीकार मत करना, इसमें से भंडारा करते रहना आवश्यकता अनुसार अपने पास रखना। ऐसे कबीर भाव ऐसे ऐसे कबीर भगवान फिर 5 वर्ष की होगी
जिनको कर्म मस्तक धरा नीरू एक बहनो, बहनों माने गाय अनजावर को दोहत है दी दूद दिया तत्काल तीनों बालक ब्रह्म गति ही सांसी भय द्वाल। अब ऐसे कबीर भगवान फिर वो 5 वर्ष के हो जाते हैं। एक दिन क्या होता है, एक रामानंद नाम के महापुरुष वृद्ध महात्मा बाल ब्रह्मचारी 11 वेदों के कंठस्थ व्यास पर याद कर रहा था, गीता जी के महान उपासक विद्वान पुरुष, काशी के अंदर पाखंडी लोग पंडित बहुत रहते थे, दुनिया को गुमराह की हुए थे, सच्ची भक्ति नहीं बताते थे, ये भी पंडित थे रामानंद जी, उन्होंने वेदों का पूर्ण ज्ञान था, गीता जी का पूर्ण ज्ञान था और शास्त्रों का आरूढ़ थे। उन्होंने देखा कि काशी इतनी उत्तम नगरी है और इसमें ये पाखंडी पंडितों ने अपनी रोजी रोटी का धंधा बना रखा है और गुमराह कर रहे हैं, सतमार्ग दर्शन नहीं करे। तो वो पंडित जी रामानंद पंडित विद्वान पुरुष उसने काशी में आ जाता है और काशी में आकर के अपनी सच्ची भक्ति वेदों के अनुसार गीता जी के अनुसार नाम भक्ति को आरूढ़ करता है। उन्होंने 52 दरबार बना रखे थे जहां पर एक दिन में 52 स्थानों पर सत्संग करवाया करते थे तो अपने ऋषि महात्माओं के द्वारा, और 12 संप्रदाय बना रखे थी उसने नारी नारी कि तुम जाकर के प्रचार करो, और 1400 उसने ऋषि स्थित बना रखे, तो टोटल उनके 1484 बने थे। पहले 1400 बना रखे थे क्योंकि वो केवल पंडितों को नाम दिया करते थे, शिष्य बनाते थे, अन्य जाति वालों को हीन समझते थे, हीय समझते थे, उसको योग्य नहीं मानते थे कि भक्ति के योग्य होंगे। तो जी ऐसे पहुंचे हुए विद्वान थे, कबीर साहब ने क्या किया, उन्होंने गुरु मर्यादा को बनाए रखने के लिए उस पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान ने भी गुरु बनाना पड़ा, तो उनको गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, ये यहाँ की मर्यादा है, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा और पासपोर्ट के बिना प्रधानमंत्री भी विदेश नहीं जा सकता, ना विदेश का यहाँ आ सकता, ये नियम है। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन गुरु बनाना चाहा, उसने मालूम था कि ये अभी भी ब्रह्म है रामानंद जी, छोटी जाति वाले अन्य जाति वालों को वो नाम नहीं देते थे, गुरु शिष्य नहीं बनाते थे। कबीर साहब ने उस इतने महान आत्मा के भ्रम को तोड़ने के लिए और सतमार्ग प्रदर्शन करने के लिए लीला की, एक 2.5 साल के बालक का रूप बनाकर गंगा के घाट की पौड़ियों में जाकर सुबह सुबह लेट गए, उसमें ये महात्मा जी स्नान के लिए जाते थे, उसमें महात्मा जी की आयु जो है 104 वर्ष की, 104 साल की आयु हो चुकी थी इसकी रामानंद जी की, लेकिन शरीर हटा करता था, बाल ब्रह्मचारी थे, योगी पुरुष थे, अच्छी जड़ी बूटियों की को प्रयोग करते थे, स्नान करने के लिए सुबह सुबह मुंह अंधेरे जा रहे हैं और जब गंगा के घाट में उतर रहे हैं स्नान करने के लिए, कभी साहब के सर में उनकी खड़ाव लगती है, 2.5 वर्ष के बच्चे के रूप में जब वो लेटे हुए थे, खड़ा लगते ही तो रोने लगते जैसे बच्चा रोया करे बिलख बिलख कर। महात्मा जी ने, क्योंकि संत दयालु बहुत होते हैं, एकदम झुके, जब झुके तो उनके गर्दन की एक माला होती है कंठी बोल रहे थे, वह कबीर साहब के गले में गल गई, अंधेरे मेरा पटियाना, और फिर गोदी में खा लिया, बोला बेटा रो मैं इतना मैंने दीक्षा को ना पुत्र अंधेरे में धोखे में ला गई तेरे ठोकर, सिर पर हाथ धरा बेटा राम राम बोलो, राम नाम से कष्ट दूर होते। कबीर साहब चुप हो गए, वो तो खेल खेल रहे थे, तो जी ये बैठ जाओ बस बच्चा, मैं स्नान कर लेता हूँ, और तू कहाँ आ गया इतना नादान बालक, यहाँ पे किसका है बोल रहे को नहीं, अब बच्चा नहीं बोल रहा है तो कोई बात नहीं, आश्रम में ले जाऊंगा, किसी का होगा तो भिजवा देंगे उसके घर पे, ऐसा करके बैठा गया और स्वयं स्नान करने लगे। कबीर साहब वहां से अंतर ध्यान होकर अपनी झोपड़ी में आ गया अपने माता पिता के पास। कुछ दिनों के बाद एक दिन कबीर भगवान जो है एक सत्संग में चले जाते हैं जहाँ पर एक रामानंद का शिष्य विद्वान ऋषि वो कोई कथा कर रहा था विष्णु पुराण की। विष्णु पुराण में बता रहे हैं कि भगवान विष्णु से शिव की उत्पत्ति हुई और इन्होंने ब्रह्मा को अपने कमल नाभि कमल से उत्पन्न किया। ये सर्वशक्ति मान ही जो चाहे सो कर दे, तीन लोक के भगवान। अब यह परिभाषा ने इसमें वायल की, एक तरफ का कहते हैं सर्वशक्तिमान अर्थ तीन लोक के भगवान, तो ये तो सोचो सर्वशक्तिमान तो सारे लोगों का होना चाहिए, तभी सर्वशक्तिमान हो सकता है। चलो जैसे भी नाकने दे रहे थे अपने सत्यम सत्यम करके वो मंदिरा कर डाओ। कभी साहब थोड़ी देर दूर सत्संग समापन हुआ तो कहता जी मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, शंका उत्पन्न होती है, सारी सभा बैठी है। वो कहता पूछो क्या पूछना चाहते, क्यों तो अपने वापस मांडी पा गया था। तो कबीर साहब ने एक प्रश्न किया कि कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है हमको दे बता। अब यह सारे फेर क्यों दिए, क्यों वही विद्वान पुरुष शिवपुराण को पढ़ता है जो लोग शिवजी तो सारे पैदा हुए, ब्रह्मा भी विष्णु भी सर्वशक्तिमान है तीन लोग के भगवान। अब वो विष्णु पुराण को सुनाते हैं विष्णु से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ शिव उत्पन्न हुआ, और शिव अर्जुन ब्रह्मा पुराण को बताते ब्रह्मा से विष्णु और शिव की उत्पत्ति, बता भाई इनकी कोई ठिकाना तो पूछो इनसे। तो जो बोला भाई बता कर, अब उसने कि मैं बेरा हूं तो बताऊं क्योंकि शास्त्र इनकम्प्लीट है, और कम्प्लीट है तो इन पेन का दशा होनी जिनको मन नहीं समझ माई के भी देवी भागवत पुराण में लिख रखा है कि देवी जो है सेना वाली इन ब्रह्मा विष्णु महेश माता है। हरिवा साहब कहती है बेटा जब सारा कोई काम अट जाना आपका मुझे याद कर लेना, वहां खड़ी पाऊंगी, और मेरा और तुम्हारे पिता नरेंद्र को हमेशा याद रखना, इससे तुम्हारा काम ये राज्य है ठीक चलता रहे। तो फिर कहते हैं कि रिसीवर मैं बताऊं आपसे, एक दिन मैंने शिव पुराण सुना था उसमें लिखा है कि शिव जी से ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई। ऐसे एक दिन ब्रह्मा पुराण सुना था उसमें ब्रह्मा से शिव और उसकी विष्णु की उत्पत्ति बताते हैं। देवी भागवत में बताया कि तीनों की माँ है। अब जी ये हमारे शंका उत्पन्न हुई है, अगर आपको तो महसूस ना हो तो समाधान कीजिए। अब समाधान तो सहनीन के पास, तो उन्होंने उसने सोचा भाई बड़ा पश्चार्या संगत के इतना कितने दिन होगा हमने तो बना रहा था उतने जवाब भी नहीं आ रहा, तो अपनी उसमें मैया अपने अभिमान वश उस मूल चीज ने तो भूल गया, कहने लगा तू कौन है तू कहां से आया है। वो बोला मेरा नाम कबीर है और मैं नीरू दुल्हे का बेटा हूँ। तो जी वो तो सौ का पारा व्यास का तुम्हारा तो देखा भगत दिनों, कहने लगा तेरा गुरु कौन है कि मेरा गुरु है जो है कबीर भगवान रामानंद जी। कौन रामानंद कि जो रामानंद जी आपके गुरुदेव है वही मेरे गुरुदेव है। स्वामी रामानंद जी और कौन रामानंद जी वही रामानंद जी। इस बात को पकड़ लिया उसने, देखो भाई जितने भगत जन है ये झूठा आदमी है, ये बच्चा बहुत झूठा है, हमारे गुरुदेव तो इन छोटी जाति वालों को अपने नेड़े भी नहीं आने देते, नजदीक भी फटकने देते, इनके दर्शन भी नहीं करते, और ये झूठा कपटी कहता है मैंने उनसे उपदेश ले रखा है, मैं गुरुदेव के पास जाऊंगा उनको बताऊंगा तेरे जो ना डंडे पड़ेंगे और तेरी पिटाई बनेगी। कबीर साहब कहने लगे भाई जैसे आपकी मौज है गुरुदेव से पूछ लेना और मुझे भी मैं आ जाऊंगा अगर गुरुजी मुझे आदेश देंगे आने का। अगले दिन उसने तो पूरा पंगा पा दिया, अगले बोला तुम भी आना सारे देखना इसकी पोल खुलेगी। इस बात को महसूस सभी देखने खातर चले जाते हैं सुबह सुबह 10 बजे से 11 बजे, और उधर से वो जाकर के शाम को अपने गुरुदेव को बताता गुरुदेव एक नीच दुलाहे के बालक ने हमारी इज्जत उतार दी, कहता मैं रामानंद जी से नाम ले रखा है और मैंने तो उसको कहा कि तेरी सहमत आओगी गुरुदेव ने बताऊंगा। तो रामानंद जी जैसे मृग उछला कर इतना दुख मान गया कि वो झूठ बोलता है, वो कपटी है, मैं नीच जाति वालों को तो दर्शन भी नहीं देता ना दर्शन करता हूं। और सुबह उसको लाना पकड़ के यहाँ पर और सारी दुनिया के बीच में उसको जलील करेंगे। अब उस मालिक के कबीर भगवान की रजा थी। क्या होता है कि उनको वो तो ताक में बैठा था, सुबह सुबह उसने ऋषि जी ने भेज दिए चार वस्त्र ने कि लाओ उसको पकड़ के, और पकड़ के वहीं से उनके माँ बाप के सामने से उठाकर कबीर भगवान को चल पड़ते हैं। उसकी माँ रो, उसके पिताजी रो कि मेरे बच्चे ने ऐसी क्या गलती कर दी, इसको मारो मचना। उनको भी कह दिया खबरदार वहां आगे तो नीच जाति वालों, तो वो डरते वहां जा को ना भाई महापुरुष के आश्रम में बाहर खड़े खड़े रो रहे हैं भगवान या कौन बनी, देख हम गरीबों का कोई नहीं है और ये हमें जानबूझ कर पीड़ा दे रहे हैं, हमारे बच्चे को दुखी कर रहे हैं। अंदर गए काजी कबीर साहब आगे है, रामानंद जी ने पर्दा लगवा दिया ये कह नो दिखाने के लिए कि मैं इनके दर्शन भी नहीं करता, ये झूठ कहते हैं। इतने में क्या करते हैं कि इसको बैठा रहने दो यहाँ पर, मैं थोड़ी पूजा करता हूँ और फिर बाद में बात करूंगा। वो पूजा कैसे करते थे रामानंद जी, आंखें बंद कर लेते थे, भगवान विष्णु की मूर्ति काल्पनिक बनाते थे काल्पनिक, और फिर उसको जैसे गंगा जल अपने सिर पे लाए हो आदर श्रद्धा से नंगे पारा नहाकर उस गंगा जल को बाल्टी में डालकर और भगवान विष्णु की मूर्ति को गंगा जल से स्वच्छ कर रहे नहा रहे, सारे कपड़े उतार देते हैं और नए कपड़े पहनाते हैं, धोती बांधते हैं, तिलक लगाते हैं और ऊपर मुकुट रख देते हैं और गले में माला डालनी भूल जाते हैं, एक कंठी होती है माला डालनी अति आवश्यक है क्योंकि ये कर्म कांड के अंदर आता है, सत्कर्म में आती है, अगर माला ना डाले तो पूजा पूरी नहीं है। और मुकुट रखने के बाद मुकुट उस दिन उतारा नहीं जाता, वो अब सुकून होता है, मुकुट बाद में रखते हैं पहले माला डालनी चाहिए थी परंतु उस दिन वो भूल गए, याद नहीं रही। ये लीला थी जब रोज करते थे उस दिन क्यों भूले, या खेल खेलना था परम पिता कबीर भगवान ने, तो जिन्होंने क्या किया रामानंद जी ने सोचा कि मुकुट तो उतार नहीं सकता और माला डालनी कभी अति आवश्यक ना था पूजा खंडित, उसने उस मुकुट के अंदर से कोशिश करता है कल्पना से कि मुकुट के अंदर से डाल देता हूँ वो यहाँ आकर फंस जाती है आगे नहीं जाती, असमंजस में होकर बैठ जाते हैं। कहा जिंदगी में पहली बार मेरे साथ ऐसा शांत हुआ है, कैसी घटना घटी है या मेरे कौन से कर्म की हानि होगी। इतने में बाहर बैठे वो कबीर भगवान बोलते हैं पांच साल के बालक कहते स्वामी ढूंढी खोल कर, मैं बोले महाराज जी इस माला की गांठ खोल लो और फिर गले में डालकर फिर गांठ लगा दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा, मुकुट उतारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब रामानंद जी किसकी माला की गांठ खोल लो थे, वो तो कल्पना कर रहे थे कि मूर्ति थी ही नहीं कि बाहर दिखाई दे जा। उसने देखा भाई नो कहते हैं भगवान का नाम मालूम इस रूप में आ जा, इतना तो ज्ञान था क्योंकि विद्वान पुरुष थे परमात्मा को चाहने वाले भी थे। कोई भगवान बैठा है सामने तो मेरे मन की बात बता दी, डोडी पर्दा दूर भगा और लीना कंठ लगा छत्ती को ला दिया, वो बार जिसमें नफरत कर रहा था और गरीब दास गुजरी बहुत, गरीब दास गुजरी बहुत जो बदन बदन मिला, सामने कितने उसके चेले बैठे और वो जनता जो रोज कहा करती थी कि एक महापुरुष छोटी जाति वालों के दर्शन भी नहीं करता और उस छोटी से छोटी जाति वाले को गरीब से गरीब के बालक में और वो अपने सीने से छुपा रखा, वो कहे एक दो महसूस तो बहुत दुनिया की एक वही भगवान जो विद्वान पुरुष होते हैं ना उसने समाज ने ठाकुर पिटक दिया था समय आने पर। वीरवासी महाराज कहते हैं वक्त पड़े सौदा करे और कोठे मेरे ज्ञान, उसने भगवान सामने खड़ा ज्ञान जो उनके सकता ना अरना भी ज्ञान और जाति की परिणाम में गिर जाना चाहिए। फिर कहता है कि बच्चा एक बात तेरी बिल्कुल ठीक है कि तेने मेरे मन की बात बता दी, तो परम शक्ति है। एक बात बता कि हाँ आपने झूठ क्यों बोला कि आपने मेरे से उपदेश ले रखा। गुरुदेव झूठ नहीं बोला मैंने, मैं नाम ले रखा आपसे। मैंने कब नाम दिया ना जान तेरे को, आप झूठ बोल रहे हो। स्वामी जी एक दिन गंगा की घाट पर आप सुबह सुबह नहाने गए थे, वो तो रोज ही जाता हूँ। उस दिन मैं गंगा की घाट की पौड़ियों में सो रहा था, आपके खड़ाओं मेरे कमर में सिर में लगी थी, मैं बहुत रोया था, आपने मेरे प्यार किया था, आपने कहा था बेटा राम राम बोल, राम का नाम लिया कर, और मेरे सिर पे हाथ रखा साथ में भगवान, आपने कहा कि भगवान बजा करो। कहने लगा कि मैं राम का नाम नहीं देता, मैं तो स्वाभाविक जैसे ये राम राम को जपने का नहीं है, ये तो शक्ति बोधक शब्द है, उसने मैं तो नाम और देता हूँ, लेकिन आप कैसे कहते हो कि मैं राम का नाम देता हूँ। जैसे हम सत साहेब बोलते हैं, सत साहेब जी सत साहेब जी, ये हमारा मंत्र नहीं है, ये तो परमात्मा को इशारा करते हैं कि भगवान सत्य है, वो परमात्मा वो सत्य जो है वो ईश्वर, हम उसकी साधना करेंगे, वही सत्य है, वही जाकर हमें सही ठिकाना होगा, लेकिन उसको पाने का मंत्र न्यारा है, वो हम न्यारा सतनाम देते, वो सतनाम सतनाम नहीं जपा जाता, उस सतनाम का भी आगे और ज्यादा एक भेद है। तो महाराज ने कहा कि ओम मंत्र देते हो, वो आपने मुझे दिया नहीं अभी, अब दे दो। अब ऐसे कैसे दे दो, तो आपने नाम नहीं लिया ना मेरे से, लिया जी कैसे, वो माला काट कर दिखा दी, वो कंठी जो रामानंद जी के गल पे निकल गए उसके महाराज के गले में गल गई थी, कहते आप ये कंठी तो देते हो जिसको शिष्य बनाते हो, फिर स्वयं गया अकिया आपके गले में कैसे आ गई, अकिया आप बताओ कैसे आ गई, फिर स्वीकार कीजिए जी अब तो बिल्कुल। और एक बात बता बच्चा क्या, कि वो तो 2.5 साल का बालक था और तुम तो 5 साल के बच्चे, उसमें 5 साल के बच्चे बहुत तगड़े हो जाते थे और 2.5 साल का बच्चा बहुत छोटा होता था। तो कृष्ण साहब कहते हैं कि स्वामी जी ये सामने देखिए एक सेवक की खटिया थी खास चारपाई और नीचे नीचे रखी थी, कृष्ण साहब ने उसके ऊपर दूसरा रूप बना लिया, वो 2.5 साल के बच्चे का और 5 साल के रूप में सामने खड़े संगत सारी देख रही है। मैंने स्वामी जी ये देखिएगा ऐसा था, मैं रामानंद जी ने 6 बार तो उसको देखा, 6 बार उसको देखा, फिर आंखें मसलों के मेरी आंखों का गर्म हो, फिर देखा चरणों बोला बिल्कुल ठीक है, चरणों में गिर जाता है। वो 104 साल का महात्मा ये देखिएगा, ये कबीर साहब 5 साल की आयु में खड़े हैं, ये सामने इनके गले में माला है, अंदर ये छोटी सी खाट पर चारपाई पर छोटे से रूप में ये यहाँ पर है, ये 5 साल की आयु में और ये 2.5 साल की आयु में, ये 2 रूप में महाराज दिखाई दे रहे हैं। फिर रामानंद जी कहता है इस बात को देखकर वो स्वयं जाता है ये परम शक्ति है, रामानंद जी को विश्वास बन गया कि ये परमात्मा स्वरूप है। फिर कबीर साहब से को डिस्कस करते हैं, कहते हैं बच्चा एक बार आप अकेले बैठेंगे, अब चलो जी। कबीर साहब कहते हैं भगवान हे गुरुदेव आप काहे की पूजा कर रहे हो, मैं बोले बेटा मैं भगवान विष्णु शिव जी शंकर सारे की पूजा करता हूँ और एकादशी का व्रत रखता हूँ, गंगा में स्नान करता हूँ और तीर्थों पर भी जाता हूँ, ऐसे ऐसे अपनी सारी बुद्धि बताता है, तो क्या होगा भगवान इससे कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा और स्वर्ग में क्या होगा कि वहां पर बच्चा दूधों की तो नदी चलती है बहती है विष्णु के लोक में, और बड़ा सुंदर लोक है सफेद लोक है, वहां पर मुझे देव शरीर मिलेगा और वहां पर सुंदर सुंदर हीरे पन्ने द्वारा सुंदरता के लिए शरीर में नेचुरल होते हैं या तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी चल पाल लगा देता है ये कालो का, वहाँ पर हीरे पन्ने नेचुरल शरीर में उन देवताओं के होते हैं, अलर्ट औरतें और आदमियों के, जिससे उनकी ब्यूटी यानी उनकी सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाती है कि वहाँ मुझे देव शरीर मिलेगा, भगवान के दर्शन करा करूंगा, ठाठम ठाठ रहेंगे और मुरली बज जाएगी। तो रहोगे कितने दिन स्वामी जी वहां पर? वो कहने लगा भाई ये तो मेरे मेरी कमाई के ऊपर निर्भर करता है, कितने मेरे पुण्य होंगे उन पुण्यों के आधार पर मेरा वहां पर एक समय सेलेक्ट होगा, मेरा जो है निर्धारित किया जाएगा रहने का जीवन। तो उसके बाद कहां जाओगे स्वामी जी? ये बच्चा फिर मृत्युमंडल में आना पड़ेगा अपने फिर जन्म सुधारने के लिए। क्या ये शोर है कि आप दोबारा मनुष्य बन जाओगे? अकेले नहीं हो सकता है, हमारा संस्कार 84 लाख जूनियों में जाने का होगा और फिर कभी मनुष्य शरीर मिलेगा। तो कहने लगे महाराज जी मैं आपको बताऊं एक कहानी। अब क्या कि आपने असंख्यों जन्म होगी आपने ऐसे ही चक्कर लगाता है, आप भक्ति भी करते हो स्वर्ग भी जाते हो, स्वर्ग के बाद फिर नरक में भी जाते हो क्योंकि नरक भी आपने भोगना पड़ेगा। गीता जी ने लिखा है जैसे कर्म प्राणी करेगा वो भोगने पड़ेंगे, जैसे का तात्पर्य पुण्य भी और पाप भी, उनों के लिए स्वर्ग है और पापों के लिए नरक है। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो 84 लाख दुनिया में आपने भोगने पड़ेंगे, ये इसका अपना संविधान है काल भगवान का, निरंजन का, ब्रह्म का। कहने का पुत्र है तो ऐसा कही ऐसा, तो मैं आपको एक ऐसा स्थान बताऊं जहाँ की साधना सबसे आसान और श्रेष्ठ है। गीता में लिखा है ना कि उस परमात्मा का भजन कर अर्जुन, जिसकी भक्ति करने के बाद इस जीव के द्वारा लौट कर नहीं आता, क्योंकि ये जो कथाएं हैं मैं बार बार क्यों सुनानी पड़ रही है, क्योंकि यो बुरुष मारनी पड़े है, बुरुष मार कर ये नया रंग चढ़ाना पड़ रहा है मुझे इस कबीर भगवान का, जो अति आवश्यकता शास्त्र में प्रमाण है इन बातों का। इसमें लिखा है कि उस परमात्मा का ध्यान अर्जुन, ये है 18वें अध्याय का 40वां श्लोक, जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति यानी उत्पत्ति होती है और जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त हो सकता है जन्म मरण विद्या का। यहाँ पर गीता में 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में लिखा है उस भगवान का भजन कर ले अर्जुन और वह स्वाभाविक कर्मों द्वारा, उसमें ज्यादा अटपट नहीं करनी, अपने बाल बच्चों में रहते हुए पूरे गुरु और उस परमात्मा का, उस परमात्मा का वो नुमाइंदा संत है, उस पूर्ण परमात्मा सतपुरुष का, पूर्ण ब्रह्म का, और भाई उसे नाम लेकर अपना स्वाभाविक काम भी करते रहो और ये पूजा भी करते रहो, आप जो है ना उस भगवान के पास पहुंच जाओगे। उस भगवान की पूजा के लिए अन्य पूजा नहीं करनी होगी, अनन्य मन से उसकी पूजा आपने करनी पड़ेगी। 18वें अध्याय का 62वां श्लोक बताता है कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस ईश्वर की शरण में चला जा, सर्वभाव अन्य पूजा कपि त्याग कर और केवल एक परमात्मा सतपुरुष की साधना पूरे गुरु से लेकर और भक्ति करता रहे, चला उसकी कृपा से तू परम शांति संसार से समता उपरीत और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा फिर मरना नहीं होगा। नहीं तो यहाँ ब्रह्मा भी मरते हैं, विष्णु भी मरते हैं, शिव भी मरता है, लेकिन सतलोक में गई हुई आत्मा का फिर मरण नहीं होता। 18वें अध्याय का 63वें श्लोक में कहता है ये गुप्त से गुप्त ज्ञान भी मैंने आज तुझे बता दिया, जो कि मैंने आज से पहले किसी को नहीं बताया, इन तू अच्छी तरह विचार कर ले जो तूने करना है। 18वें अध्याय का 63वां श्लोक है ये, पढ़ना गीता जी आपके पास होगी। 8वें अध्याय का 8वां श्लोक बताता है कि अर्जुन अभ्यास योग से युक्त अनन्य का चिंतन न करने वाले शिष्य, परम जीव पुरुष का चिंतन करता हुआ श्री छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त होता। अभ्यास योग एक भक्ति योग, एक ज्ञान योग है, और ये अभ्यास योग, हम आपको अभ्यास योग सिखाते हैं। अभ्यास योग क्या है कि नाम उठत नाम बस नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम खेती लागवे। नाम उठत सुता उठत जब भी मंत्र करे, नाम सती दफा भी मंत्र करता करता सोचा मैंने सपने में भी मंत्र कर लेगा चलेगा आपका, और उठो जब भी सो सती, और नाम खाते नाम पीते और नाम खेती लाग, ये अभ्यास बन जाएगा आपका। कहते ना अंत समय में श्री सुनते हैं, अंत समय में जो भगवान का चिंतन करता हुआ श्री चालता है वो उसी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है जिसका वो करता है। मान लो कोई विष्णु उपासक है, नाम का मंत्र से मिला हुआ पूरे गुरु से, और उसने अभ्यास योग को अपना परिपक्व कर रखा है, तो अंत में विष्णु लोक के पास में पहुंच जाएगा, अपने कर्मों के अनुसार वहां रहेगा, उसके बाद फिर वो स्वर्ग और नरक भोगेगा। लेकिन कबीर साहब का जो मार्ग है ये अभ्यास योग सतनाम और सारनाम का है। इस मंत्र का जाप सारनाम का जाप करता हुआ ये प्राणी अपने सतलोक में पहुंच जाएगा। अभ्यास योग किसका परिपक्व होगा, जो पहले रूप से अभ्यास कर रहा है, अंत समय में भी उसको वही याद रहेगा। एक बुजुर्ग था और वो शरीर छोड़ने लगा, तब उसकी जुबान बंद होगी, जुबान बंद होगी तो बच्चों ने तो ऐसे ऐसे गर्दन मार रहा है जैसे बोलना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, हाथ नहीं कर रहा है पर बोल नहीं पा रहा। उनके बच्चों को लड़कों को मालूम था कि पिताजियों के पास बहुत ही धन है, लेकिन ये कहते थे बताऊंगा कभी समय आने पर, आज ये अचानक मर रहे हैं और बताना चाहते हैं पर बता नहीं पा रहे। इसका क्या समाधान हो कि पैसा हमें मिल जाए, गुरु एक बार पिताजी बोल पड़े। किसी ने बता दिया कि ये साथ वाले गांव में एक डॉक्टर रहता है, इंजेक्शन लगा देता स्वास्थ्य को बढ़ा नहीं सकता, लेकिन एक बार जुबान उठ जाती है बोल पड़ता है, रुपये 500 लेगा चांदी के 500 रुपये 500 गुना में 100 कर दो, आज 50,000 रुपये होगी। उन्होंने सोचा कि मनमान कई लाखों रुपये पाओगे चांदी के रूप में पिताजियों के पास, इन 500 में कोई फर्क पड़ेगा, तुम ये जो सारे जा रहे हमारे से डॉक्टर के पास की। उन्होंने सिचुएशन बताई, वो बोला 500 रुपये पहले यहाँ रख दो, तुम्हारा पिताजी बोल लोगा, जो ठेका कोई ना को तुमने घर बता देगा कि ये बताओगा पर बोल लोगा जरूर, इंजेक्शन से एक बार जबान उठेगी उसकी, तो वो जो 500 रुपये से घर रखवा दिए और जाके वो देगा इंजेक्शन ला दिया। इंजेक्शन ला के वो बात कहता रहा कि तुम ये तो सारे ये बछड़ा का रूख आ गया, वो बच्चा था तो बच्चा गऊ का वो झाड़ू को चाप रहा था, और क्योंकि बूढ़ा जो है ना इसका बीमारी ला गया करे, बैठा बैठा रुक के मारे जागा रहा, बहस खुल गई, रस का रास्ता बंद आके नहीं है, खेत में गए थे कि नहीं है, यानी उसके बस का कुछ नहीं पर बिरडवा देश से गरीब की जा रहा, तो उसको ये चिंता होगी रहा तुम नाश करोगे, बच्चा झाड़ू खान लाग रहा तब कि तुम्हें ये नहीं संभालते क्यों ना मेरे मरने के बाद सारा नाश होगा, तो माथे वहां तुम्हारे मुझके लड़का अख्तियार की जाड़ू हमने पहले सब पड़ी पिताजी, और फिर वो ढा मर गया। तो उसने अभ्यास योग यू कर रखा था, एक रुखाड़ा जाया करता बाजरे का मारा सस्ता लागे था,